हरे कृष्णा।
आप सब भक्तों का आज की भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है और हमारे बीच में बहुत ही विशेष वक्त उपस्थित हैं, हिज ग्रेस अतुल कृष्ण प्रभु। हमारा सौभाग्य है कि अतुल कृष्ण प्रभु जी यहाँ पहली बारी हमें अपना आशीर्वचन दे रहे हैं। एक ब्रीफ संक्षिप्त परिचय। प्रभु जी ने इस्कॉन संस्था को ज्वाइन किया 1997 में मुंबई में। उसके बाद 1999 में इनकी सेवा हो गई बेलगांव में और भक्ति रसामित महाराज के साथ ये बेलगांव में गए। लगभग 15 वर्ष इन्होंने सेवा की। मुख्य इनके केरे जो सेवा के मुख्य एरियाज थे यूथ प्रीचिंग, कॉन्ग्रेगेशन प्रीचिंग। और उसके बाद 2015 से प्रभु जी 2014 से प्रभु जी बेलगांव के आगे ही एक क्षेत्र है कारवार, जो कि गोवा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर एक नया मंदिर आ रहा है। तो प्रभु जी वहाँ के अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ प्रभु जी पूरे विश्व में विख्यात हैं अपने मधुर प्रवचनों के लिए। आप इस्कॉन डिजायरेट्री में जाके प्रभु जी के प्रवचनों को डाउनलोड कर सकते हैं और ये प्रचार करते हैं, भारत में ही प्रचार करते हैं, वृंदावन में, VIHE में भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव कोर्सेज पढ़ाते हैं और साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, कीनिया आदि में जाके प्रचार करते हैं। तो मुझे अक्टूबर में एक मीटिंग में प्रभु जी से मिलना हुआ तो मैंने इनसे निवेदन किया और प्रभु जी ने मेरे निवेदन को स्वीकार के लिए स्क्रीन का धन्यवाद देता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में उपस्थित हैं अतुल कृष्ण प्रभु। हरि हरि बोल। और साथ ही में हम स्वागत करना चाहेंगे इस ग्रेस कृष्ण भक्त प्रभु जी का। कृष्ण भक्त प्रभु इस्कॉन नोएडा के अध्यक्ष हैं और प्रभु जी के साथ आए हैं। और साथ में हम स्वागत करना चाहेंगे इस ग्रेस व्रजंगी प्रभु का। व्रजंगी प्रभु यही पंजाबी बाग से ही गए हुए भक्त हैं। वो कह रहे हैं पंजाबी बाग मेरा पहला गांव है। ये ब्रजंगी प्रभु पिछले 20 साल से भी अधिक इस्कॉन संस्था में हैं और 15 साल से भी अधिक इन्होंने पद यात्रा में भाग लिया और आजकल इस्कॉन नोएडा में ये संकीर्तन लीडर हैं। उन्हीं भक्त को ट्रेनिंग कर देते हैं। तो इतने वरिष्ठ भक्त हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए, तो आइए इनके संघ का पूरा लाभ उठाएं। कृपया करके अपने मोबाइल फोन्स को स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर रखें और ध्यानपूर्वक भागवत संदेश को ग्रहण करें। हरे कृष्ण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 24। कृपया दोहराइए। गते थ दुर्वा शशि सोमरीशो द्विजो पयोगाति पवित्र माहर ऋषे विमोक्षं व्यसनं च वीक्ष्य मेने स्ववीर्यं च परानुभावम्। गतेथ दुर्वाससि सोमरीशो द्विजो पयोगाति पवित्र माहर ऋषे विमोक्षं व्यसनं च वीक्ष्य मेने स्ववीर्यं च परानुभावम्। गतेथ दुर्वाससि सोमरीशो द्विजो पयोगाति पवित्र माहर ऋषे विमोक्षं व्यसनं च वीक्ष्य मेने स्ववीर्यं च परानुभावम्। गते वापस आने पर अथ तब दुर्वाससि महान योगी दुर्वासा के सह वह राजा अम्बरीश महाराज अम्बरीश द्विज उपयोग शुद्ध ब्राह्मण के लिए सर्वोपयुक्त अति पवित्रम अत्यंत शुद्ध भोजन आहरत खाया और खाने को दिया ऋषे ऋषि का विमोक्षम मुक्ति अर्था अथवा छूटना व्यसन सुदर्शन चक्र द्वारा भस्म किए जाने के महान संकट से च तथा वीक्ष्य देखकर मैंने विचार किया स्ववीर्यम अपने पौरुष के विषय में च भी पर अनुभावम भगवान की शुद्ध भक्ति के कारण। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। एक वर्ष बाद जब दुर्वासा मुनि लौटे तो राजा अम्बरीश ने उन्हें क्षमा की जो 23वां श्लोक का अनुवाद भी पढ़ेंगे और फिर 24वां 33वां दुर्वास 23वें श्लोक का अनुवाद है। दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश के स्थान से चले गए थे और जब तक वे वापस नहीं लौटे पूरे एक वर्ष तक तब तक राजा केवल जल पीकर उपवास करते रहे। एक वर्ष बाद जब दुर्वासा मुनि लौटे तो राजा अम्बरीश ने उन्हें सभी प्रकार के व्यंजन भरपेट खिलाए और तब स्वयं भी भोजन किया। जब राजा ने देखा कि दुर्वासा दग्ध होने के कारण महान संकट से मुक्त हो चुके हैं तो वे समझ सके कि भगवान की कृपा से वे स्वयं भी शक्तिमान हैं, किंतु उन्होंने इसका श्रेय अपने को नहीं दिया क्योंकि ये सब भगवान ने किया था। तात्पर्य, महाराज अम्बरीश जैसे भक्त नाना प्रकार के कार्यों में सदा व्यस्त रहते हैं। निसंदेह यह संसार सभी प्रकार के संकटों से भरा पड़ा है जिनसे मनुष्य का सामना होता रहता है, किंतु भगवान पर पूर्णता आश्रित रहने के कारण भक्त तनिक भी विचलित नहीं होता। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण महाराज अम्बरीश हैं। वे सारे जगत के सम्राट थे और उन्हें अनेक कार्य संपन्न करने होते थे और इन कार्यों के बीच में दुर्वासा मुनि जैसे व्यक्ति अनेक प्रकार के व्यवधान उपस्थित करते रहते थे, लेकिन राजा इन सब को धैर्य पूर्वक सहता जाता था क्योंकि वे भगवान की कृपा पर पूर्णतः निर्भर रहता था। किंतु भगवान आप सबके हृदयों में स्थित हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, और वे अपनी इच्छा अनुसार कार्य चलाते हैं। अतः यद्यपि महाराज अम्बरीश को अनेक उपद्रवों का सामना करना पड़ा किंतु भगवान उन पर दयालु थे, अतएव सारी बातें इस तरह से नियोजित हो सकी कि अंत में दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश महान मित्र बन गए और उन्होंने भक्ति योग के आधार पर मैत्री भाव से एक दूसरे से विदा ली। अंततः दुर्वासा मुनि को भक्ति योग की शक्ति पर विश्वास हो गया यद्यपि वे स्वयं महान योगी थे। अतएव जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धा पूर्वक मुझ में सदैव विश्वास करता है और दिव्य प्रेमा भक्ति से मेरी पूजा करता है वह योग द्वारा मुझसे भली भांति संयुक्त हो जाता है और सबसे उच्चस्थ होता है। इस तरह यह तथ्य है कि भक्त महानतम योगी होता है, जैसा कि महाराज अम्बरीश द्वारा दुर्वासा मुनि के साथ किए गए व्यवहार से सिद्ध होता है। हरे कृष्णा। बहुत आभारी हैं आप सबके कि आप इतनी बड़ी संख्या में भागवत श्रवण के लिए आए हैं, और साथ ही साथ रुक्मिणी कृष्ण प्रभु के भी आभारी हैं कि उन्होंने अनुमति दी हमें यहाँ पर बैठने की, कुछ भागवत पर चर्चा करने की। वैसे मंदिर बहुत सुंदर है आपका, और विशेष करके राधिका रमन जी के विषय में बहुत वर्षों से सुन रहे हैं। बेलगाम में यहाँ से कुछ भक्त आया करते थे तो वो बताया करते थे कि राधिका रमन विशेष करके उनके नेत्र, तो हम अभी वही ध्यान से देख रहे थे क्योंकि अभी तक केवल सुना था और अब कृष्ण की सुंदरता के दर्शन भी हो गए। तो आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, भगवान अलग अलग रूपों में अलग अलग समय पर अपने अलग अलग ऐश्वर्यों को प्रकट करते हैं। जब भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, जैसे जब भगवान वामन या मोहिनी अवतार लेते हैं तो सौंदर्य को प्रकट करते हैं, जब नरसिंह देव का अवतार लेते हैं तो फिर आप जानते हैं क्या प्रकट करते हैं, कपिल के रूप में आते हैं तो ज्ञान प्रकट करते हैं। तो ऐसे ही जब भगवान इस्कॉन के अलग अलग मंदिरों में प्रकट होते हैं तो अलग अलग ऐश्वर्यों को प्रकट करते हैं, कहीं सौंदर्य प्रकट करते हैं, कहीं ऐश्वर्य बहुत अपना दिखलाते हैं। जैसे इस्कॉन के कई मंदिर हैं जब भगवान को ऐसा लगता है बड़े ऐश्वर्यशाली हैं, राजा की तरह खड़े हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं ब्रज का प्रेम आ जाता है उनको देखकर। तो ऐसे भगवान अलग अलग जगह पर प्रकट करते हैं। आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत में, ये नवा स्कंद है। नवे स्कंद के पहले भाग में हम लोग हैं, ये दो भागों में बटा हुआ है। विशेषतः पहले 13 अध्याय ये सूर्य वंश का वर्णन करते हैं कि कैसे सूर्य वंश के अलग अलग राजा हुए, जैसे यहाँ हम लोग अम्बरीश महाराज का वर्णन पढ़ रहे हैं, आगे चलकर अन्य राजाओं का इसमें वर्णन आएगा। और फिर सूर्य वंश में एक बहुत प्रमुख राजा हुए, कौन है वो? भगवान श्री राम, उनका भी वर्णन आएगा। फिर 14वें अध्याय से सूर्य वंश समाप्त होकर चंद्र वंश का वर्णन प्रारंभ होता है, और चंद्र वंश में भी कई प्रसिद्ध राजा हुए जिनका वर्णन धीरे धीरे वहां पर किया जाएगा। विश्वामित्र का वर्णन आता है, ययाति का वर्णन आता है, और फिर चंद्र वंश के चंद्र अंत में कृष्ण का वर्णन आता है। और इसी का ये आधार बना 10वें स्कंद के लिए, जब परीक्षित महाराज ने कृष्ण का थोड़ा सा नाम सुन लिया, अच्छा चंद्रवंश में आए थे, जानबूझ के सुखदेव गोस्वामी ने विस्तार में नहीं कहा। जो वक्ता होते हैं सुखदेव गोस्वामी जैसे, वो श्रोताओं की जो इच्छा होती है या उत्सुकता होती है उसके अनुसार वर्णन करते हैं। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने थोड़ा वर्णन कर दिया जानबूझ कर कि देखें अब परीक्षित क्या कहते हैं, तो परीक्षित ने कहा बस बहुत हो गया वंशों का वर्णन, बहुत सारे राजाओं का वर्णन सुन लिया आपने, इतना सब पूरे 9 स्कंद सुना दिए, अब केवल कृष्ण कथा और कुछ नहीं सुनना है। तो फिर 10वां अध्याय 10वां स्कंद पूरा कृष्ण कथा पर आएगा। यहाँ जिस अध्याय में हम लोग हैं ये 5वां अध्याय है, जहाँ दुर्वासा मुनि को जीवन दान दिया गया, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है, बहुत शिक्षाएं हमें प्रदान करता है। इसके पहले कुछ श्लोकों में सुदर्शन चक्र के प्रति प्रार्थनाएं हैं, तो आप अगर देखेंगे तो पहले करीब 10-11 श्लोक जो हैं वो केवल सुदर्शन के प्रति प्रार्थनाएं हैं। 12वें श्लोक से अम्बरीश महाराज का गुणगान दुर्वासा मुनि करते हैं। दुर्वासा मुनि ने जब देखा कि इतना जिस कोई नहीं बचा पाया दुर्वासा मुनि को, जब भागे थे तो कहाँ कहाँ गए, सब जगह गए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा दूर से चले जाओ, अंदर नहीं आना, हाँ क्योंकि अब आप तो चले जाओगे सुदर्शन मेरे पीछे आ जाएगा, तो कोई बचा नहीं पाया, भगवान के पास चले गए। वैसे दुर्वासा मुनि कहते हैं कि वैकुंठ चले गए, भगवद गीता में भगवान कहते यद गत्वा न निवर्तन्ते, लेकिन वो फिर वापस आ गए, है ना, दुर्वासा मुनि वापस आ गए, वैकुंठ से कोई वापस आता फिर दुर्वासा मुनि कैसे आ गए, प्रश्न है ना। चले गए थे भगवान के धाम, और फिर वहां हम तो भगवद गीता में पढ़ते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, और फिर यहाँ हम लोग देखते हैं कि दुर्वासा मुनि चले गए और जाकर वापस भी आ गए और सुदर्शन पीछे ही है। भगवान के पास भी गए, भगवान ने क्या कहा, अहम भक्त पराधीनो, कुछ नहीं कर सकता मैं भी। जहां भगवान भी ये कह दें कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेबस हूं, ये स्थिति कब हो सकती है? क्या भगवान को ऐसा कहना चाहिए? भगवान के लिए तो ये स्थिति होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन भगवान बेबस हो जाते हैं अपने भक्तों के समक्ष। इसीलिए जब गोपियों को वो कहते हैं, गोपियां उनके समक्ष आती हैं, तो भगवान कहते हैं कि आपका जो समर्पण है, आपकी जो सेवा है, उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, खाली हाथ है मेरा। न पाराय हम, भगवान कहते कुछ नहीं है देने के लिए। तो भगवान बेबस हो जाते हैं अपने भक्तों के सामने, जैसे ब्रज में लीला करते हैं। तो इसी तरह भगवान ने कह दिया। तो सुदर्शन चक्र को पीछे देखा था दुर्वासा ने और देखा कि कोई नहीं बचा पाए, केवल अम्बरीश महाराज। इसीलिए अम्बरीश महाराज का गुणगान करते हैं। फिर 18वें श्लोक से 24वें श्लोक तक इस अध्याय में, जिसको हम लोग अब पढ़ रहे हैं, ये अध्याय का आखिरी, तीसरे भाग का आखिरी श्लोक, तो इसमें अम्बरीश महाराज आदर करते हैं दुर्वासा मुनि का, और फिर दुर्वासा मुनि वापस जाते हैं। और 25वें श्लोक से, जो कल का श्लोक आएगा, फिर इससे इस कथा को सुनने की फलस्तुति दी गई है कि क्या लाभ होता है ये कथा को सुनने का। तो ऐसे छोटा सा अध्याय है, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भक्ति के देता है। इस श्लोक में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है कि दुर्वासा मुनि लौट आए और फिर अम्बरीश महाराज को बहुत अच्छे से भोजन कराया, अम्बरीश महाराज ने भी किया और उनको भी कराया। तो ऐसे वर्णन किया गया है। और इस श्लोक में वर्णन करते हुए ये कहा गया कि अम्बरीश महाराज ये समझ सके कि वे स्वयं भी बड़े शक्तिमान हैं, अर्थात ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर पाए, कोई देवता कुछ नहीं कर पाया, भगवान ने भी मना कर दिया। वैसे हम चर्चा कर रहे थे कि जो दुर्वासा मुनि वैकुंठ गए थे, वो प्रपंचिका वैकुंठ में गए थे, वो दिव्य वैकुंठ नहीं गए थे, इसलिए वहां से वापस आ सकते हैं। प्रपंचिका वैकुंठ इसी जगत में वैकुंठ का हिस्सा है, तो इसीलिए प्रपंचिका वैकुंठ में जाकर वे वापस आए, वो वहां नहीं गए थे। वहां जाकर कोई वापस नहीं आता, आने की आवश्यकता भी नहीं है। प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखा अन्य लोकों की सुगम यात्रा। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हम सही में जा सकते हैं? मैंने कहा हाँ। और फिर उसने कहा, फिर वहां से वापस आ सकेंगे ना? तो प्रभुपाद ने कहा, मूर्ख वापस क्यों आना चाहते हो? तो हम सबकी यही इच्छा है कि हम सब यहाँ रहें। बड़ा अच्छा लगता है ना ये जगत, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, है ना? बस यही हमारा सिद्धांत है। लेकिन भक्ति हमें सिखलाती है, आचार्य सिखलाते हैं यहाँ से बाहर जाना है। तो इस श्लोक में कहा गया है कि अम्बरीश महाराज स्वयं को जान सके कि इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन अपने को श्रेय नहीं दिया उन्होंने, अहंकार नहीं आया उनको। आप सोचिए, अगर आप में से किसी को पता चल जाए कि आप ब्रह्मा जी से, शिव जी से, सारे देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो क्या आप बैठ कर यहाँ भागवत सुनेंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं, है ना? अरे कितनी शक्ति है। लेकिन एक भक्त के रूप में अम्बरीश महाराज अपने उदाहरण से हमें सिखला रहे हैं, कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, श्रेय नहीं देना चाहिए। जब हम अपने आप को श्रेय देते हैं, हम भगवान की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। जब हम अपने आप को श्रेय दे रहे हैं, हम भगवान के प्रति अपने अज्ञान को दर्शा रहे हैं। जब हम अपने आप को श्रेय दे रहे हैं, हम भगवान से दूर जा रहे हैं। जब हम अपने आप को श्रेय दे रहे हैं, तो भगवान की नहीं, अहंकार की भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए श्रेय नहीं देना चाहिए। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि श्री भगवान जब वन में गए, तो उन्होंने ऋषि मुनियों से पूछा कि मैं कहाँ रहूं, और ऋषि मुनि उनसे पूछ रहे थे कि भगवान आप कहाँ नहीं हैं ये बताइए, क्योंकि वो वन में गए थे। तो भगवान ने कहा, अरे परमात्मा के रूप में मैं सबके हृदय में हूं, लेकिन अब ये रूप में कहां रहूं, अभी वन में आया हूं, वो बताओ। तो ऋषि मुनियों ने बहुत से स्थान दिए उनको रहने के लिए, और उनमें से एक स्थान था, रहने के लिए स्थान दिए या कहना चाहिए कि भगवान इन स्थानों में रहते हैं, तो उनमें से एक स्थान था। ऋषि मुनियों ने कहा कि हे भगवान, आप उनके हृदय में रहिए जो हर सफलता का श्रेय आपको देते हैं और हर असफलता का दोष अपने ऊपर लेते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में आप रहिए। तो इसीलिए यहां हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने श्रेय अपने को नहीं भगवान को दिया। हम सबको ये जानना चाहिए, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, जो कला जो ज्ञान हमें मिलता है भगवान से प्राप्त होता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे ही शक्ति का अंश मात्र है, जो भी करते हैं यद यद विभूति मत सत्वम, हम जो भी चीजें यहां श्रेष्ठ देख रहे हैं, बहुत बढ़िया चीजें देख रहे हैं इस जगत में, या हमारे अंदर कोई कला है कोई गुण है, ये केवल भगवान के ऐश्वर्य का अंश मात्र है और भगवान की कृपा से आता है। अभी हम इतना बोल रहे हैं यहां पर, हमें अहंकार है कि हम बड़ा अच्छा बोलते हैं, इसीलिए हार वार पहनकर बैठे हुए हैं आप सबके सामने। अब बताइए, हम बोल रहे हैं और भगवान जरा सा यहां पर कुछ कर दें, आवाज आएगी, तो क्या अहंकार है हमें, किस चीज का अहंकार होना चाहिए हमें। जरा सा एक क्षण लगता है भगवान को हमारी सारी कला, हमारी सारी जो भी गुण बुद्धि इत्यादि हमसे छीन लेने के लिए, एक क्षण की बात है, और फिर भी जीव अहंकार करता, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, ये सब हमारी कामनाएं हैं, इसी को हम लेकर बैठे हुए हैं, मैं और मेरा अभिमान है ये। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि हमने कई जन्मों में क्या अर्जित किया है, अहम मम अभिमाने मात्र धन बद्ध जीवन जबलि जने मने मन। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अहम मम अभिमान ए मात्र धन, और कोई धन इकट्ठा नहीं किया हमने कई जन्मों में, तो इसीलिए इस धन को लेकर हम लोग सोचते हैं हम ईश्वर हैं, नियंत्रक हैं, ईश्वर यानी नियंत्रण करना, ईश्वरों हम। लेकिन क्या सही दृष्टि में ईश्वर हैं हम, नियंत्रण कर सकते हैं अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर, अपने अहंकार पर? दास हैं हम, है ना, सही दृष्टि में तो दास हैं। किसके दास? कृष्ण के नहीं, अपनी इंद्रियों के, अपनी इच्छाओं के दास हैं। इसीलिए ईश्वरों हम नहीं कहना चाहिए इस जगत में, हमें कहना चाहिए दासों हम, ईश्वरों हम अहम भोगी, ये भावना है ना, भोग करने की भावना सब में है। तो ये भोग करने की भावना कहां से आती है? अगर हम सब मूलतः श्री कृष्ण के सेवक हैं, जैसे कहा जाता है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, तो फिर ये भोग करने की भावना कहां से आ गई? क्यों हम लोग इस जगत में केवल आनंद लेने के लिए भागते हैं? हमने तो कभी नहीं देखा कि मंदिर में कोई आए, राधिका रमन जी के सामने खड़े हों और प्रार्थना करें, भगवान पिछले हफ्ते में बहुत खुश था, कुछ तो दुख दीजिए। कोई प्रार्थना करते हैं कि इस हफ्ते बिल्कुल कष्ट ही कष्ट होना चाहिए, इतना कष्ट कि मैं थक जाऊं, रोता हुआ आपके पास आना चाहिए अगले बार? कोई नहीं, भोग चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो क्यों ये भोग प्रवृत्ति आ गई, क्यों भगवान की सेवा चली गई? सारी गलती किसकी है? ब्रह्मा जी की। सही में हमारी कोई गलती नहीं है, ये जो हमारे अंदर भोग प्रवृत्ति आई है, ये जो हम इस जगत का आनंद लेना चाहते हैं, गलती ब्रह्मा जी की है। ब्रह्मा जी ने जब जीवों को शरीर दे रहे थे, रचना कर रहे थे, तो उन्होंने पांच प्रकार के मोह को जन्म दिया सबसे पहले ब्रह्मा जी ने, ताकि बद्ध हो जाए ये जीव। उन्होंने तामिश्र, अंधतामिश्र और तमह मोह और महामोह, ये पांच चीजें बना दी जीव के लिए, आवरण बनाए पांच प्रकार के। शुद्ध जीव है हम सब शुद्ध हैं, लेकिन ये जो आवरण ब्रह्मा जी ने दे दिया ये हमारे हमें मोह में डाल देता है। तामिश्र, तामिश्र मतलब अपने आप को ईश्वर समझना, द्वेष करना भगवान से। आप में से कितने लोग भगवान से द्वेष करते हैं? बहुत थोड़े लोग हाथ उठा रहे हैं, और वो भी धीरे धीरे उठा रहे, करते नहीं करते हैं, ऊपर आ रहे फिर शायद नहीं हम नहीं करते। अगर हम भगवान से द्वेष नहीं कर रहे होते तो यहां नहीं होते हैं। भगवान आध्यात्मिक जगत में बहुत सुंदर लीलाएं करते हैं, भगवान की चिन्मय लीला होती है आध्यात्मिक जगत में, और इस जगत में जो लीलाएं करते हैं उनको नैमित्तिक लीलाएं कहते हैं। तो नैमित्तिक और चिन्मय लीला आध्यात्मिक जगत में, जैसे आध्यात्मिक जगत में बहुत सी लीलाएं हैं भगवान नहीं करते, जैसे जन्म, आध्यात्मिक जगत में जन्म होता है भगवान का, होता है या नहीं? बिल्कुल नहीं, जन्माष्टमी नहीं मनाते वहां, अरे फिर उत्सव कैसे होता होगा वहां पर? भगवान का जन्म नहीं होता। असुरों का वध करते हैं भगवान, नहीं करते? देख लीजिए, सोच कर बताइए ठीक से, फिर से, असुरों का वध करते हैं या नहीं करते? असुर नहीं है वहां, क्यों नहीं है? भगवान का धाम है, सब कुछ होना चाहिए, असुर क्यों नहीं है वहां? कारण दीजिए। अच्छा ठीक है, प्रभु जी कह रहे हैं वहां और कोई कारण असुर नहीं होते हैं? एक कारण हम बता सकते हैं, हम सब तो यहां बैठे हैं ना, तो वहां कैसे होंगे? सही है ना? तो तामिश्य का अर्थ है भगवान से द्वेष करना, अर्थात अपने आप को भोगी मानना। हम सब द्वेष करते हैं भगवान से, क्योंकि भोग प्रवृत्ति अभी भी बनी हुई है, भोग करने की इच्छा है। और फिर अंधतामिश्र, अंधतामिश्र मतलब भोग करते रहो, और अंधतामिश्र का अर्थ क्या है? मृत्यु के परे कुछ नहीं है, है ना? जैसे चार्वक ऋषि ने क्या कहा, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवित सुखम जीवित भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत। वो कहते हैं कि ऋण लो, चोरी करो, डाका डालो, खास करके कहते हैं ऋणम कृत्वा, ऋण ले लो, क्यों? मर जाओगे तो बैंक वाले पीछे कहां आने वाले हैं? सही है ना? लोन ले लो और जब मर गए तो खत्म। तो ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जीना है तो घी खाकर जियो। शायद उन्होंने कलयुग में ये नहीं लिखा था, क्योंकि कलयुग में तो घी भी ऐसा होता है कि खाने से सारा हेल्थ खराब हो जाती है, कलयुग का घी, लेकिन वो उस समय की बात कर रहे थे। तो घी खाना मतलब ये ऐश्वर्य का जीवन माना जाता है, घी में खाते हैं। कई बार लोग इतने कंजूस हो जाते हैं, एक बार एक कंजूस व्यक्ति था, मैं याद आ रहा है, तो बहुत पैसा था लेकिन सूखी रोटी खाता था। तो लोगों ने कहा, अरे इतना पैसा है, इतने क्यों कंजूसी करते हो, कम से कम घी लगाओ। तो बड़ा भारी पत्थर रखकर हृदय पर एक घी का टिन लेकर आया, कंजूस है तो लाने के लिए तो तकलीफ होगी, लेकिन इतना कंजूस था कि गरम रोटी को बाहर से ही लगा देता था टिन पर, बोले खोलेगा तो फिर घी खत्म हो जाएगा। तो ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवित सुखम जीवित, ये अंधतामिश्र है कि जब तक जी रहे सुख में जियो। क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य, अगर जब देह समाप्त हो गया कुतः पुनरागमनो भवेत, फिर कहां आने वाले हैं आप? आप लोगों ने अपना पूर्व जन्म देखा है, याद है किसी को आगे क्या होगा पता है? फिर क्यों चिंता करना, खाओ पियो मजा करो। ये अंधतामिश्र है, गलती ब्रह्मा जी की, याद रखिए, हमारी नहीं है। मृत्यु अंतिम, मृत्यु के परे कुछ नहीं है, ये अंधतामिश्र है। तो जब मृत्यु के परे कुछ नहीं है तो फिर क्या होता है? तीसरी चीज आती है मोह। मोह याने या तमह, क्षमा कीजिए, तमह याने आत्मा का ज्ञान नहीं होना। क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि मृत्यु के परे कुछ है ही नहीं, मतलब आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसको तमह कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने तीसरे बना दिए, गलती किसकी है याद रखिएगा। तो कल को अगर आपको कोई कहे अरे आप भक्ति नहीं कर रहे हो, आप भोगों में पड़े हुए हो, आप क्या कहना, गलती किसकी है? हमारी गलती नहीं है, उनको जाकर बोलिए। तो आत्मा का ज्ञान नहीं होना, ये तीसरा उन्होंने आवरण बना दिया, तमह। और यही सब है हम लोगों के लिए। हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन कितनी बार हम इस चीज को अनुभव करते हैं? इवन हमारे शब्दों में ये नहीं आता। हम लोगों से पूछते हैं हाउ इज एवरीबॉडी इन योर हाउस, एवरीबॉडी BODY बॉडी, इजंट इट? हम ये पूछते हैं आपके घर के सारे शरीर कैसे हैं, हाउ इज एवरीबॉडी इन योर हाउस, यही पूछते हैं ना हम, ये भी नहीं तो शब्दों में भी नहीं। आज से आप लोग ये पूछिएगा आपके घर की सारी आत्माएं कैसी हैं। गलत है कि सही है? सही है ना? वो व्यक्ति कहेगा मेरे घर में भूत रहते हैं क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तमा है। आत्मा को नहीं जानना। तो पहले तो हम अपना ईश्वरीय भाव भगवान से द्वेष करते हैं, और फिर अपने आप को ये सोचते हैं कि मृत्यु के परे कुछ नहीं है, इसीलिए खाओ पियो मजा करो, जीवन में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और फिर तीसरा ब्रह्मा जी ने बना दिया कि हम भूल गए आत्मा का, अपने आप को ही भूल गए कि आत्मा होती है। इसीलिए कई लोग कहते हैं आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, किसने देखा है, आगे क्या है पीछे क्या है, ये सब आप लोगों की कहने की बात है, आप दिखाइए हमें आत्मा। तो ये तमा है। और फिर जब ये भावना आ जाती है तो फिर आत्मा नहीं है तो हम भोग प्रवृत्ति और बढ़ाना है, और फिर अपनी इंद्रिय तृप्ति को हम विस्तार करते हैं परिवार में समाज में। तो ये जो आसक्ति होती है पुत्र दारा ग्रहादिशु, इन लोगों में अपने पुत्रों से अपने संतानों से, और ये तो स्वाभाविक आसक्ति है ना? अच्छा हमें बताइए संतान से आसक्ति होनी चाहिए या नहीं, भक्ति की दृष्टि से बताइएगा। बिल्कुल नहीं, पक्का? व्यासदेव जिन्होंने भागवत में, पूरे भागवत में और अन्य पुराणों में वैराग्य का इतना वर्णन, अनासक्ति का इतना वर्णन किया है, जब उनका पुत्र भागा घर से तो क्या कर रहे थे? अनासक्त हुए, छोड़ दिया कि हाँ भाई ठीक है भगवान के ऊपर, भाग रहे हा पुत्र हा पुत्र, अरे इतना लिख दिया शास्त्र में फिर भी भाग रहे, भागे कि नहीं भागे? अनासक्त। तो आसक्ति परिवार की स्वाभाविक है ना? तो ये आसक्ति जो है ये भी गलती किसकी है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो ये उन्होंने मोह बना दिया, इसको मोह कहते हैं, चौथा चीज उन्होंने बना दिया। कितनी आसक्ति हमारी पारिवारिक चीजों में कि हम उसके परे देख नहीं पाते हैं। आसक्ति हो तो वो तो श्री कृष्ण में होनी चाहिए, इसीलिए भजन में कहा गया है विषय जे प्रीति हबे, जो आज हमारी विषयों में प्रीति है वही प्रीति अगर भगवान के चरण कमलों के प्रति हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन हमारी प्रीति विषय से बाहर आती ही नहीं है, भक्ति में आकर भी भक्त होकर भी हमारी प्रीति किस में है, कृष्ण में नहीं है, आसक्तियों में सुविधा में भोगों में है। कि भक्ति के नाम पर कैसे हम आनंद ले लें, अपने आप को भक्त कहलाने में आनंद लेते हैं हम लोग, भक्ति की सुविधाओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि जब भक्ति करने लगते हैं तो भौतिक सुविधाएं बढ़ जाती हैं। अब देखिए ब्रह्मचारी सन्यासी, सन्यासियों को तो वैरागी होना चाहिए, लेकिन आप देखिए सन्यासी कहीं जाने के लिए खड़े होते हैं, बढ़िया से बढ़िया गाड़ियां खड़ी रहती हैं उनके लिए। खाने के लिए किसी के घर में चले जाएं तो वैसे तो वो लोग अपने घर वालों को सूखा खिलाएंगे, लेकिन जब सन्यासी आते हैं तो 50 डिशेस बनती हैं, है ना? भगवान सुविधाएं दे देते हैं जब हम उनके प्रति प्रास जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन सुविधाओं में आसक्त नहीं होना चाहिए। सुविधाएं भगवान की सेवा के लिए हैं, उनको उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है। एक भक्त के जीवन में एक सिद्धांत होना चाहिए, तपस्या मेरे लिए, सुविधा दूसरों के लिए। अगर इस यही प्रभुपाद ने किया, प्रभुपाद जी के जीवन का सिद्धांत देखिए, जो भी प्रभुपाद ने किया ये सिद्धांत था। स्वयं उन्होंने तपस्या ली लेकिन सारे जीवों सारे अन्य लोगों को सुविधा प्रदान करते थे। स्वयं बीमार थे, मृत्युशैया पर थे, देह त्यागने वाले थे, उन्हें पता चला कि उनके एक शिष्य कुछ बीमार हैं तो उनके लिए ऐसे लेटे हुए खुद वो उपाय बता रहे थे, उसको बोलो ये करे, और फिर अगले दिन पूछ रहे थे उसकी तबीयत कैसी है। स्वयं के लिए तपस्या और दूसरों के लिए सुविधा। श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस्कॉन के सारे मंदिरों में श्रवण और कीर्तन की सुविधा प्रदान की जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं बस भक्त अपने आप बनेंगे लेकिन हमें सुविधा प्रदान करनी है। जैसे अभी हम लोगों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं कि वे लोग आकर भगवत गीता ले नहीं सकते तो हम जाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं अब लीजिए आप भगवत गीता। तो इस तरह से ये पारिवारिक आसक्ति चौथी चीज ब्रह्मा जी ने बनाई जिसे मोह कहते हैं। और पांचवा अंत उन्होंने बनाया महामोह। महामोह मतलब इंद्रिय तृप्ति में व्यक्ति पागल हो जाता है, बस कुछ नहीं, जैसे कहते ना उस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता तो वो वैसा हो जाता है। जिसके लिए प्रहलाद महाराज कहते हैं मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा मिथो विपद्येत ग्रह व्रताना अदांत गोभीर विशतम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनाना। तो ये महामोह है। तो ब्रह्मा जी ने बना दिए ये पांच। और ब्रह्मा जी भी तो भक्त हैं भगवान के। जब उन्होंने ये बनाया तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि अरे अरे मैंने क्या कर दिया, ये जीवों को भगवान से दूर कर दिया मैंने, ये मेरी कैसी सेवा हो गई। बड़े दुखी हो गए, उन्होंने अपने उस शरीर को त्याग दिया ब्रह्मा जी ने इतने दुख में। और फिर ब्रह्मा जी ने इन पांच प्रकार के मोह से बाहर आने का मार्ग दिया जीवों को। उन्होंने चार कुमारों की सृष्टि की, चार कुमार उत्पन्न किए और उन चारों को एक एक सिद्धांत दिया जिससे इन पांच प्रकार के मोह से बाहर आ सकते हैं। पहला सिद्धांत उन्होंने दिया योग, दूसरा दिया सांख्य, तीसरा दिया उन्होंने वैराग्य और त्याग। तो ये चार चीजें उन्होंने दी कि किस प्रकार से योग, एक एक पुत्र को उन्होंने इस सिद्धांत को दिया और उन एक एक पुत्र ने उस सिद्धांत का प्रचार किया। तो पांच चीजें तो दे दी, गलती ब्रह्मा जी की है, ब्रह्मा जी ने भी स्वीकार किया लेकिन अब उससे बाहर निकलने का मार्ग भी दे रहे हैं। तो जैसे यहां हम इस श्लोक में देख रहे हैं कि अम्बरीश महाराज अपने उदाहरण से ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे हमें आचरण करना चाहिए। हमें महाराज अम्बरीश से, प्रभुपाद लिखते हैं हमें सीखना चाहिए महाराज अम्बरीश से कि उन्होंने कोई श्रेय नहीं लिया। तो श्रेय लेने का अर्थ है हम भगवान बनना चाहते हैं, तो इसीलिए जीवों को किसी भी चीज का श्रेय नहीं लेना, श्रेय भगवान को देना चाहिए। जब तक हम श्रेय ले रहे हैं हम भगवान बन रहे हैं। भक्ति में नम्र रहना ये बहुत अनिवार्य है। भगवद गीता में भगवान जब ज्ञान के लक्षणों का वर्णन करते हैं तो सबसे पहला लक्षण वो कहते हैं अमानित्वम। बहुत देते हैं अमानित्वम, अधम्बित्वम, अहिंसा, क्षांतिराज्यम, आचार्य, उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, लेकिन पहला अमानित्वम। और प्रभुपाद तात्पर्य में इस पर चर्चा करते हैं। बहुत से बाकी चीजों को उन्होंने कहा लेकिन तीन प्रमुख चीजों की वो चर्चा करते हैं उस तात्पर्य में। अमानित्वम, नम्र होना, भगवान की भक्ति, भक्तिरव्यभिचारिणी, और आचार्य उपासना, क्योंकि वो कहते हैं कि इनसे ही प्रगति हो सकती है। तो इसीलिए नम्रता बहुत आवश्यक है। नम्रता का अर्थ है श्रेय नहीं लेना। जब हम श्रेय ले रहे हैं तो हम अहंकार दिखला रहे हैं और अहंकार से द्वेष उत्पन्न होता है। द्वेष को समाप्त करने के लिए हमें सराहना करनी चाहिए। द्वेष को कैसे समाप्त कर सकते हैं? हम सबके हृदय में थोड़ा बहुत द्वेष रहता है, निंदा की भावना आ जाती है। ये तो बड़ा सरल है, निंदा करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन भक्तों का एक गुण होता है अनिंदया, कभी निंदा नहीं करते हैं। और निंदा कौन करता है? जिसके हृदय में द्वेष है, क्योंकि द्वेषी व्यक्ति कभी किसी दूसरे की सराहना कर ही नहीं सकता। इसीलिए द्वेष को समाप्त करना है तो हमें किसी की सराहना करना प्रारंभ करना चाहिए। अगर आपके हृदय में द्वेष है, आशा करते हैं आप सब महान भक्त हैं, किसी के हृदय में नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए थोड़ा बहुत है, तो अगर उसको समाप्त करना है तो एक एक्सरसाइज कीजिए, एक अभ्यास कीजिए। रोज एक व्यक्ति को जाकर उसके गुण के लिए उसका गुणगान कीजिए। सही में इसका अर्थ ये नहीं कि एक ही व्यक्ति के पास जाकर एक ही चीज रोज बोलिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रोज एक व्यक्ति को जाके कह प्रभु जी आप बहुत अच्छा गाते, प्रभु जी आप बहुत अच्छा गाते, प्रभु जी बहुत, वो बोलेगा मैं गाना छोड़ दूंगा लेकिन आप बोलना बंद करो। तो ये नहीं कह रहे हैं कि रोज एक ही व्यक्ति के पास जा, हर अलग अलग व्यक्ति को देखिए, आपस में हम रहते हैं आसपास, तो उसके पास जाकर उसका गुणगान कीजिए कि आपके अंदर ये बहुत, हमने देखा है प्रभु आप बैठकर जपा बहुत अच्छा करते हैं, हमने देखा है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप अध्ययन बहुत अच्छा करते हैं, आप कभी किसी दूसरे कार्यों में नहीं लगते, हमने देखा आप अपने में रहते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते, कितनी सारी चीजें हैं। गुणगान कीजिए, हृदय से द्वेष चला जाएगा। लेकिन गुणगान भी हृदय से होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जाके कहें प्रभु आप बड़े नम्र हैं और अंदर मन में कहें जानता हूं कैसे हैं, बताऊंगा बाद में। हाँ, ऐसे नहीं, हृदय से गुणगान होना चाहिए, द्वेष चला जाएगा। और जब द्वेष जाएगा तब हम भगवान को श्रेय दे सकेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहां पर अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि के प्रसंग में भक्ति की श्रेष्ठता को दर्शाया जा रहा है। दरअसल ये जो प्रसंग है ये हमें मनुष्य जीवन की उपयोगिता को दर्शाता है, इस भौतिक जगत की निरर्थकता को दर्शाता है और आध्यात्मिक जगत की शाश्वतता को दर्शाता है। अगर हम ये चीजें जान जाएं कि कैसे ये जो भौतिक जगत है इसकी को इसकी बहुत निरर्थक है, निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, अनर्थ मतलब अर्थ नहीं है, तो ये भौतिक जगत निरर्थक है। क्यों? क्या इसमें कुछ नहीं है? भौतिक जगत तो भगवान की शक्ति है, फिर कैसे हम इसको निरर्थक कह सकते हैं? ये निरर्थक है जब तक हम इसका उपयोग भगवान तक पहुंचने के लिए नहीं करते, तब तक इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब हम इस भौतिक जगत की सुविधाओं का, इस भौतिक जगत का, यही माया सृष्टि माया शक्ति का उपयोग भगवान तक पहुंचने के लिए करते हैं, उसकी सार्थकता होती है, अन्यथा ये जगत निरर्थक है। और दूसरी चीज, भौतिक जगत निरर्थक है लेकिन आध्यात्मिक जगत शाश्वत है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि वो व्यक्ति मूर्ख है जिसने अशाश्वत चीजों के लिए शाश्वत चीजों को त्याग दिया है। क्यों? शाश्वत चीजें तो त्याग दी, चली गई, वो तो मिलने वाली नहीं है, और जो हाथ में है वो अशाश्वत है, कितने समय तक रहेगा? तो इसीलिए वो मूर्ख व्यक्ति है, चाणक्य पंडित कहते हैं, जिसने ऐसा कार्य किया। इसीलिए हमें आध्यात्मिक जगत की शाश्वतता को समझना चाहिए कि अगर कुछ शाश्वत है तो वो केवल आध्यात्मिक जगत है। इस जगत में तीन ही चीजें शाश्वत हैं, भगवान, भगवान की भक्ति और भगवान के भक्त, ये शाश्वत है। भगवान के भक्त कैसे शाश्वत हैं? क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं कि भगवान के भक्त की कभी मृत्यु नहीं होती। जो ये मानता है कि भगवान का भक्त मर गया वो गलत मानता है। तो भगवान के भक्त शाश्वत हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद, आज ही नहीं आने वाले हजारों वर्षों तक, और हजारों ही वर्षों तक, क्यों, जब तक ये जगत रहेगा किसी न किसी रूप में उनकी शिक्षाएं इस जगत में बनी रहेंगी। भक्ति शाश्वत है और भगवान शाश्वत है, अन्य सब इस जगत में अशाश्वत है। और इसीलिए हमें मानव जीवन की उपयोगिता को समझना चाहिए। यहां पर बताया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा योगी हो, बहुत बड़ा तपस्वी हो, कोई लाभ नहीं है योगी और तपस्वी होने का, क्योंकि योगी और तपस्वी अहंकारी हो जाते हैं, जैसे दुर्वासा मुनि पानी पी लिया अम्बरीश महाराज ने, कुछ नहीं किया था, इतना क्रोध हो गया कि उन्हें मारने के लिए उन्होंने असुर को प्रकट कर दिया, इतना अहंकार, क्योंकि व्यक्ति अपने बल पर ये योग क्रिया करने का प्रयास करता है। और भक्ति मार्ग क्या है? प्रारंभ से ही भगवान पर आश्रित रहना। इसलिए अहंकार आ नहीं सकता उस भक्त के हृदय में जो सही दृष्टि से भक्ति करता है। तो इसीलिए इस मानव जीवन की उपयोगिता यही है कि हम भगवान की भक्ति में लगें। जैसे प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में कह रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना। जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति इस प्रकार से करें कि इसी जन्म में भगवान के धाम वापस जाएं और एक जन्म लेना नहीं पड़े। बहुत कष्ट हो गया। कभी कभी लोग सोचते हैं कि प्रभु जी अभी नहीं, अगले जन्म में हम जाएंगे, इस जन्म में तो हम जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्या प्रभुपाद पर विश्वास नहीं है? क्या शास्त्रों पर, परंपरा पर विश्वास नहीं है? क्या ये विश्वास नहीं है कि प्रभुपाद ने कहा कि 16 माला जब 4 नियमों का पालन करें बैक टू गॉडहेड जाएंगे? तो इसलिए ये कहना कि अगले जन्म में आगे कभी करेंगे, ये आचार्यों पर, परंपरा पर, गुरु पर अविश्वास दिखलाना है। इसीलिए, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम आराम से बैठ जाएं कि ठीक है, आ गए हम लोग आंदोलन में, दीक्षा हो गई, बस अब तो गुरु का काम है। नहीं, प्रयास हमें करना। इसीलिए हम बता रहे थे कि ईश्वरो हम जो भावना है, हमें दास बनने का प्रयास करना है। इंद्रियों का दास नहीं, कृष्ण का, गुरु का दास बनना है और भोगी नहीं बनना है। ये जान लीजिए, इस जगत में हम सब रोगी हैं, कोई भोगी नहीं है। भवरोग लगा हुआ है, क्या भोग कर सकते हैं, इतने सारे रोग कष्ट देते हैं। तो इसलिए ये भावना, ईश्वरो हम भोगी और सिद्धो हम, क्या सिद्धियां हमें प्राप्त हैं बताइए? कोई सिद्धि है हमारे पास? थोड़ी बहुत कुछ आ जाती है हम लोग, लेकिन है हम बंधे हुए हैं, सिद्ध नहीं है और बहुत बलवान। अपने शरीर को तो रोक नहीं पाते बढ़ने से, अपने आप को बलवान मानते हैं। इसीलिए भौतिक जगत में इस श्लोक को, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, इन लोगों से कहना चाहिए दासो हम, आप इंद्रियों के दास हैं, दासो हम अहम रोगी, बद्धो हम बलहीन दुखी। सही है ना? इस जगत में यही है, ईश्वरो हम भोगी। ये तो भगवान कहते हैं, मानते हो? भगवान क्या कह रहे हैं? मानते हो? सत्यता क्या है? याद रखिएगा, दासो हम अहम रोगी, बद्धो हम बलहीन दुखी। बस ये हमारी स्थिति है, और अगर इससे हमें परे जाना है तो भगवान की भक्ति, भगवान की शरण, आचार्यों के बताए मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित ब्रह्मा जी की गलती से बाहर आ सकेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न आप सबके, कोई शंका? हाँ जी प्रभु। हाँ जी, और प्रभु जी का प्रश्न है कि हमने कहा द्वेष हो, किसी को जाके सराहना कीजिए, तो ऐसा भी तो हो सकता है कोई आके हमारी सराहना करे और हमको कहे प्रभु मैंने देखा है आप रोज किसी का गुणगान करते हो। राइट? तो कोई हमारा भी तो गुणगान कर सकता है, तब फिर अहंकार बढ़ जाएगा, तो क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। भक्ति में जैसे यहाँ पर वर्णन किया गया, श्रेय भगवान को देना है। जैसे पर अम्बरीश महाराज ने कहा, उन्होंने इसका श्रेय अपने को नहीं दिया, भगवान को दिया। तो जब आपको आकर कोई ये कहे तो आपको तुरंत श्रेय दे देना है आचार्यों को, भगवान को। ये हमारी परंपरा है। परंपरा दो तरीके से चलती है, एक ऊपर से नीचे आता है उसको ज्ञान कहते हैं, दूसरा नीचे से ऊपर जाता है। हमारा जो हमें श्रेय प्राप्त हो रहा है, जो हमें मान सम्मान मिल रहा है, ये नीचे से ऊपर जाता है। कैसे? हम अपने गुरु को देते हैं, उनके गुरु उनको देते हैं, अंततः कृष्ण को पहुंच जाता है। तो इसीलिए जब भक्त के जीवन में उनको कोई श्रेय दे या तो मानना नहीं चाहिए, समझिए आपको आके कोई गुणगान करते प्रभु आप बहुत अच्छी सेवा करते मैंने देखा है, तो हृदय में तो ऐसा ही बात है ये व्यक्ति मुझे समझ गया इसको कल एक गुलाब जामुन एक्स्ट्रा देना चाहिए। नहीं, हमें मानना चाहिए कि अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं तो भगवान की कृपा है। तो इसीलिए जो भी हमें आए हमें पारदर्शी माध्यम बनना चाहिए, बिकम अ वाया मीडियम, जो आए वो सीधा आगे चला जाए, हमारे पास कुछ नहीं रहे, तब हम भक्ति में नम्र रह सकते हैं। ठीक है, यस प्रभु, डू वी हैव टाइम, शुड वी कंटिन्यू?
हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभुजी फॉर द लेक्चर। एंड प्रभुजी, ये जो अभी टेक्निक जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें दूसरों की सराहना करनी चाहिए, तो प्रभुजी ये इज इट ओनली एप्लीकेबल अमंग्स द डिवोटीज, या फिर अगर हम बाकी जो नॉन डिवोटीज हैं उनके साथ भी अगर ऐसा आदान प्रदान करेंगे तो इट विल मेक अस हम्बल, मेक अस, यू नो,
इट अप्लाइज टू ऑल द पीपल, इट अप्लाइज टू एवरीवन, बी ग्रेटफुल टू एवरीवन। Those who are opposing you, be grateful to them that they are pushing you towards Krishna. And those who are supporting you, be grateful to them that they are holding you, protecting you. There are people who are pushing you towards Krishna, but when you come towards Krishna, there are people required to protect you, to hold you. So devotees are the one who are holding you. Be grateful to them. So it applies to everyone. Even outsiders, you meet anyone, you can glorify them. But in genuine way, try to find their, because there is no person in this world who doesn't have one single quality, good quality. So we can glory. Even Ravana had very good quality. Ravana was very good in chanting mantras, expert. So everyone. Hiranyakashipu had good quality. Bhagavatam says he gave wonderful knowledge. If you read Hiranyakashipu, when Hiranyaksha died, he was giving, if you just remove the name Hiranyakashipu from there, then it seems as if Krishna is speaking Bhagavad Gita second chapter. Right? And that is why in Bhagavatam only one place there it is mentioned, Shri Hiranyakashipu Ruvacha. Shri Hiranyakashipu. Because he is giving the knowledge which is given by Shri Bhagavan. So you can glorify others. Okay? Thank you.
हरे कृष्णा। फिर जी आपने बताया कि हमारे को ना भोग की प्रवृत्ति को छोड़ना है, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा था जो भोग की प्रवृत्ति है ना हमारी को ना जीव बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खाना चाहते हैं क्वांटिटी वाइज क्वालिटी वाइज, और इसको इससे कैसे बच सकते हैं हम?
अगर हमारी जिह्वा, वैसे तो हम लोग रोज इसको गाते हैं लेकिन याद नहीं करते हैं, तार मध्य जिह्वा अति, सारी इंद्रियों में जिह्वा अति, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे सरल उपाय है, पहली चीज कि हम लोग ये प्रण लें कि भगवान को अर्पण किए बिना कुछ नहीं खाएंगे, जो भी खाएंगे भगवान को अर्पण करके। जैसे आप कोर्ट में जाते हैं ना, गीता पर हाथ जो भी कहेंगे, कहते नहीं, वो बात अलग है, लेकिन तो ऐसे ही हमें ये प्रण लेना चाहिए, जो भी खाएंगे केवल कृष्ण को अर्पण करके खाएंगे नहीं। प्रभुपाद जी उपदेशामृत में इसको समझाते हैं कि अगर हम केवल कृष्ण प्रसाद खाएं तो बहुत जल्दी जिह्वा नियंत्रण में आती है, पहला चीज। और दूसरा चीज ये भी नहीं कि कृष्ण प्रसाद के नाम पर फिर भोग शुरू हो जाए, है ना, राइट? यही पूछना चाहते हैं, हमें पता था यही पूछेंगे। क्योंकि भक्तों को तो क्या है, विशेष करके ब्रह्मचारियों के लिए सबसे बड़ी इंद्रिय तृप्ति प्रसाद बढ़िया आना चाहिए, है ना। कल तो ब्रह्मचारी ऐसे हो गए, कोई गृहस्थ उनको घर पे बुलाते तो पहले पूछते बना क्या रहे हैं आप, वो बताइए फिर आएंगे। तो तार मध्य जीवाती, तो इसीलिए प्रभुपाद ये कहते कि प्रसाद खाना वो तो ठीक है शुरुआत की अवस्था में बहुत खाना, लेकिन फिर धीरे धीरे हमें प्रसाद को प्रसाद समझना, प्रसाद मतलब भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा केवल रसमलाई गुलाब जामुन में नहीं है, करेले और बाकी चीजों में भी है, वो भी भगवान की कृपा है। तो उसको समझने का प्रयास करना, तो पहली चीज कि हम भगवान को अर्पण किया हुआ ही खाएं, उससे हमारा धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा। और दूसरी चीज फिर उसको भी हम लोग उनमें भेद करना ना देखें, जो आ रहा है उसको भगवान की कृपा, यानी कृपा प्रसाद मतलब क्या होता है, कृपा, संस्कृत में प्रसाद शब्द का अर्थ होता है कृपा, तो जब हम खाने जाएं तो उसको कृपा देख सकें तो फिर उसको पालन करना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए। और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ें तो प्रसाद भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, विशेष करके रात्रि के समय। भक्तों को जप की तैयारी रात्रि से प्रारंभ करनी चाहिए, शाम से। हम लोग रात को बहुत ज़्यादा हैवी क्यों नहीं खाते हैं, ताकि हम सुबह जल्दी उठ सकें, जप में ध्यान लगे। अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे तो ना सुबह ठीक से उठ पाएंगे, ना जप में ध्यान होगा, नींद आएगी। तो इसलिए उसको करना चाहिए, और साथ ही साथ अपनी अन्य आध्यात्मिक क्रियाओं को बढ़ाएं, जैसे हमारा जप करना, उसको ध्यानपूर्वक अब जप करें। भक्तों के लिए बहुत अनिवार्य है कि वो ध्यानपूर्वक जप करें, समर्पित भाव से भागवत का श्रवण करें और नम्र भाव से भगवान की सेवा करें। तो इसको करने से हृदय की जितनी भी हमारी भावनाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो तीन चीज़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए, ध्यानपूर्वक जप करना, समर्पित भाव में भागवत का श्रवण करना और नम्र भाव में सेवा करना। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न है किसी के? आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है टू टेक। आप दोनों में से किसका लें, किसको श्रेय दें क्वेश्चन लेने का? आखिरी क्वेश्चन, समय हो गया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9 बजे तक खत्म कीजिए, नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा आपको, बाकी सबको।
सुंदर क्लास के लिए बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि दुर्वासा मुनि इसके बाद भक्त बने या नहीं बने इस इवेंट के बाद?
छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस दिन दुर्वासा मुनि से मिलेंगे पूछ लेंगे उनसे भक्त बने या नहीं। निश्चित भक्त बन गए, प्रभुपाद लिखते हैं इसको यहाँ पर। देखिए, आपने तात्पर्य को ध्यान से नहीं पढ़ा। प्रभुपाद लिखते हैं कि अंत में दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश महान मित्र बन गए और उन्होंने भक्ति योग के आधार पर मैत्री भाव से एक दूसरे से विदा ली। तो प्रभुपाद ने आपका उत्तर दिया है ना, यहाँ तात्पर्य में भक्ति योग के आधार पर, मतलब भक्त बन गए उसी समय। अम्बरीश महाराज जैसे भक्त के दर्शन हो जाएं, लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, तो उसको तो भक्त बनना निश्चित है, उसमें प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। क्षमा चाहते हैं 10 मिनट ऊपर हो गए।
हरे कृष्णा। तो तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे इसके सत्य कृष्ण प्रभु का, बहुत ही सुंदर मधुर और शिक्षाप्रद प्रवचन, और इनसे निवेदन करेंगे कि बार बार यहाँ पर आए और हमें अपना बहुत ही दिव्य संग दे और इस तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहे। इसके सतगुरु कृष्ण प्रभु की। और अभी आप सब भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, बहुत शुभ समाचार। जैसे कि प्रभु जी ने बताया अपने लेक्चर में कि भक्त भी शाश्वत होते हैं, जैसे कि शिला प्रभुपाद, और शिला प्रभुपाद का गुणगान करना पूरे भूतल पे, ये सब हम सब इस्कॉन संस्था के सदस्यों का परम कर्तव्य है। और इसी दृष्टिकोण से प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय शिष्य यदुवर प्रभु ने बहुत परिश्रम करके पिछले 50 वर्षों से प्रभुपाद जी के ऊपर एक बहुत सुंदर फिल्म बनाई है। आप सब जानते हैं क्या है उस फिल्म का नाम, क्या पूरा नाम क्या है? हरे कृष्णा द मंत्रा द मूवमेंट इन द स्वामी वो स्टार्टेड इट ऑल। तो इस मूवी का प्रीमियर शो हुआ था 12 नवंबर को श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में, जिसमें कि भारत के उपराष्ट्रपति भी उपस्थित थे और बहुत अच्छे ढंग से इसका प्रीमियर हुआ। आप में से कितने भक्त लोग गए थे उस प्रीमियर शो में? तो उसे आप लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर भक्तों के प्रयास से अब ये मूवी, ध्यान से सुनिए, ये मूवी पूरे इंडिया में पीवीआर सिनेमा पे रिलीज होने जा रही है 15 दिसंबर से। पहली बारी हमें मौका मिला है शिला प्रभुपाद जी के ऊपर बने हुए चलचित्र, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पूरे भारत में रिलीज हो रही है पीवीआर सिनेमा में 15 दिसंबर से। तो हम लोगों को इसका इतना प्रचार करना चाहिए कि एक एक व्यक्ति को जाके इस पीवीआर में जाना चाहिए, हाउसफुल हो जाना चाहिए, टिकट्स ना मिल रही हो, ब्लैक हो रही हो, लड़ाई झगड़े हो रहे अंदर जाने के लिए, इस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो इसलिए हम सबका निवेदन है, आप सबसे निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसका प्रचार कीजिए। रियलिटी ये है, इच्छा हम सबकी यही रहती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आपको बताते हैं। कल ही हमारे पास एक भक्त है, उन्होंने बताया कि शालीमार बाग में एक डीटी पीवीआर है, नारायणा में एक पीवीआर है, जिसके पास केवल 55 सीटें हैं, लेकिन 15 दिसंबर के शो के लिए जब मूवी रिलीज होने वाली है अभी तक 2 सीटें भी नहीं भरी। भक्त लोग बिल्कुल कहते ठीक है आराम से हो जाएंगे, लास्ट मिनट हो जाएंगे, लेकिन अगर ये सारी सीट्स फुल नहीं होंगी तो इस जो मूवी का स्क्रीनिंग नहीं हो पाएगा। कि वो तो कमर्शियल देखेंगे कि हमें कमर्शियली इसका लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसलिए क्या करना है आप सब भक्तों को, ये देखिए ये स्टेटस बताया है, देखिए पूरा जैसे इलेक्शंस होते हैं ना इतनी सीट्स हैं और इतनी फुल हैं, अभी देखिए अभी इतनी मिनिमम रिक्वायर्ड है, मिनिमम रिक्वायर्ड इतनी है और करंट स्टेटस इतना है। तो करना क्या, फटाफट जाइए अपने पूरे परिवार के साथ और टिकट्स खरीदिए, है ना, फुल कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे बहुत बड़ी डिससर्विस होगी प्रभुपाद जी के आंदोलन के प्रति। इतना सुंदर अवसर मिल रहा है, पूरी भारत की जो आबादी है प्रभुपाद की महिमा को जान सके, इससे अच्छा अवसर और क्या मिलेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, पूरे की पूरी आप देख लीजिए प्लीज, जिस जिस एरिया के पास है आप, और भी आगे इसके आगे हरे कृष्ण। और आपको जानकर खुशी होगी, आप सब भक्तों को पहली बार ये आज्ञा दी जा रही है कि आप पीवीआर में जाइए और ये हम नहीं कह रहे हैं, परम पूजनीय भक्ति चारु स्वामी महाराज ने व्यास आसन से बोला, परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज ने बोला, परम पूज्य राधा स्वामी ने बोला कि आप जाइए प्लीज पीवीआर में जाइए बच्चों के साथ जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, पड़ोसियों के साथ जाइए। 50 साल से अनुमति नहीं मिली है, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का बोला जा रहा है, पीवीआर में जाइए और सबको लेके जाइए, ठीक है। कितने भक्त लोग आज से ही ये पूरा हाउसफुल कर देंगे पीवीआर को, तो इसको गंभीरता से लीजिए, और क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो स्क्रीनिंग नहीं हो पाएंगे। तो इतना सारा जो प्रयास है, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, यस अभी हम आपको व्हाट्सएप से पूरा वो ऐप भेज देंगे, आप अपने टेलीफोन से मोबाइल फोन से ही उसकी बुकिंग कर सकते हैं, वो ऐप आपके पास आ जाएगा। कितने लोगों के पास वो ऐप आ गया, हमने फॉरवर्ड तो कर दिया था, अच्छा कई लोग जानते भी नहीं होंगे इसको, तो दोबारा से हम भेज देते हैं। तो कृपया करके आज इसको बुक कीजिए, और कई भक्तों ने करुणाचंद प्रभु ने किसी को नॉमिनेट भी किया आपने, यू हैव कलेक्टेड सम मनी, नाम प्रेम प्रभु जी ने भी, हाँ आपने कांग्रेशन किसको किया है, तो आप में से कोई कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं जो कि देख लें कि सबके सब भक्त लोग इसको जल्दी से जल्दी टिकट्स बुक कराएं। ओके, अब आप सबके लिए दिल थाम के बैठिए, आपको दिखा रहे हैं इसका ट्रेलर जिससे आपके अंदर और उत्साह बढ़े। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, आनंद कोटि वैष्णव वृंद की। अभी सुमति मुरार जी का बीच में थोड़ा आ रहा था, तो जब प्रभुपाद उनके पास गए थे तो उन्होंने उनसे कहा था, स्वामी जी यू आर वेरी ओल्ड एंड अमेरिका इज कोल्ड, और प्रभुपाद ने कहा आई एम वेरी बोल्ड। थैंक यू वेरी मच प्रभु। तो इसलिए पूरे उत्साह से हम लोग इस पीवीआर में जाएं और प्रभुपाद जी की इस फिल्म को देखें और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, और प्रभुपाद जी की कृपा को हम बांटेंगे। कल करुणाचंद प्रभु मुझसे शेयर करते बहुत अच्छी बात कि इस दिसंबर के महीने में हम भगवद गीता का वितरण करते हैं, भगवान के संदेश का प्रचार कर रहे हैं, और भगवान प्रभुपाद से इतने प्रसन्न हुए कि भगवान भी अब रेसिप्रोकेट कर रहे हैं कि इसी दिसंबर के महीने में मैं आपकी ग्लोरीज का प्रचार करना चाहता हूँ। तो हमें कृष्ण के इस प्लान में कृष्ण का सहयोग देना चाहिए, उनके बहुत प्रिय भक्त प्रभुपाद जी के गुणगान को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, गो प्रेमानंदे।